ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों की जो पालना की है उस पालना का रिटर्न देने का समय आ गया है। कितने सालों से बाप दादा हम सब बच्चों की सेवा में रहे, कितने सुंदर महावाक्यों से हमारा जीवन सींचते रहे, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता, संस्कारों में दिव्यता लाने का प्रयास बाबा करते रहे और उसके लिए ऐसी गुह्यते गुह्य बातें सुनाई कि अगर उन गुह्य बातों को सचमुच हम जीवन के अंदर प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आए तो हम सभी के सामने कभी कोई विघ्न, कोई परिस्थिति, कोई बात आ नहीं सकती है। परंतु जो बाबा की चाहना है कि मेरा हर एक बच्चा बाप समान हो जाए, वो भगवान का स्वप्न या संकल्प हम पूरा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अभी तक पुरुषार्थी कह करके हम अपने आप को कई बातों से सुरक्षित कर लेते हैं या बचाते रहते हैं, परंतु शायद अब बाबा ये शब्द भी सुनना नहीं चाहते हैं कि पुरुषार्थी है। बहुत समय बाबा ने हमें दे दिया पुरुषार्थ करने के लिए भी, लेकिन अब बाबा सेकंड में, जैसे हमेशा बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति की स्थिति, तो सेकंड में वो जीवन मुक्त स्थिति देखना चाहते हैं ताकि उस जीवन मुक्त स्थिति से हम प्रैक्टिकली अनेकों के लिए आदर्श बन जाए। ब्रह्मा बाबा हम सभी बच्चों के लिए ऐसे आदर्श रूप में रहे और इसीलिए बाबा एक एक बच्चे को भी अपने समान देखना चाहते हैं। यज्ञ की जो स्थिति है अभी समय अनुसार, हम कहेंगे कि यज्ञ की अब तीसरी अवस्था चल रही है। प्रथम अवस्था जब यज्ञ की शुरुआत हुई 1936 में, जब यज्ञ की शुरुआत हुई और जब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने ये बात बताई साक्षात्कार के माध्यम से कि तुम ही श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा हो, वो तुम्हारा ही स्वरूप है और ब्रह्मा बाबा ने उस महावाक्य को बिना किसी संशय के, बिना किसी सवाल के उस बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके ब्रह्मा बाबा ने अपने श्री कृष्ण के संस्कारों को इतना सुंदर तरीके से इमर्ज करना शुरू कर दिया, या यूं कहे कि श्री कृष्ण के संस्कारों का जन्म हुआ इतना बाबा ने उस संस्कार को इमर्श किया और प्रैक्टिकल स्वरूप बन गए कि जो भी ब्रह्मा बाबा को देखते थे ब्रह्मा बाबा के साथ साथ उन्हें भी मिचनु कृष्ण दिखाई देता था। यज्ञ इतिहास में दादियों के अनुभव में हम सभी सुनते हैं ये बात कि उस समय जो भी दादियां आई यज्ञ के अंदर हर एक को ब्रह्मा बाबा के साथ छोटा बच्चा श्री कृष्ण स्वरूप साक्षात्कार होता था। इतना निश्चय बुद्धि बन करके बाबा ने उन संस्कारों को इतना तीव्र गति से इमर्ज कर लिया कि वो स्वरूप का साक्षात्कार हर एक को होने लगा और उसके बाद जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं शुरू हुई तो यज्ञ के अंदर भी वो 14 साल ऐसे बीते दादियों के कि जैसे हर रीति से श्री कृष्ण के साथ ही वो थे ऐसा महसूस करने लगे। महसूस तो नहीं सिर्फ लेकिन ऐसी बाल लीलाओं को अनुभव करने लगे। इतना सुंदर बाबा के साथ का वो 14 साल कहां बीत गया पता ही नहीं चला, 4 दीवारियों के अंदर, क्योंकि पार्टीशन का समय शुरू हो गया, बाहर तो निकल नहीं सकते थे, तो इसीलिए वही 4 दीवारियों के अंदर बाबा के साथ, भले वो छोटे छोटे बच्चों के रूप में थे, 14 साल 15 साल के बच्चों के रूप में थे, और बाबा इतना बुजुर्ग 60 साल के, लेकिन फिर भी बाबा ने वो श्री कृष्ण के संस्कारों को इतना जागृत कर दिया, इमर्श कर दिया। और इस तरह से 1950 तक वो अनुभव में सब जीते रहे और उसके बाद जैसे ही 1950 से आबू आए तो आबू आने के बाद बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया क्योंकि यज्ञ की रचना करनी थी, बाबा को स्थापना करनी थी, इसीलिए वो पार्ट भी जरूरी था। लेकिन आबू आने के बाद वो पार्ट बाबा ने धीरे 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 करके, साक्षात्कार भी एक माया है ऐसे कहते हुए वो पार्ट को बंद कर दिया। और यहां आने के बाद जैसे वो श्री कृष्ण बाल स्वरूप से युवा स्वरूप में आ गया था और युवा स्वरूप में जब आ गया तो शास्त्रों में जैसे दिखाया है कि युवा अवस्था में तो गीता ज्ञान देना चालू किया। तो इसी तरह 1950 से लेकर के साकार बाबा ने वो श्री कृष्ण के संस्कार को जागृत किए और शिव बाबा ने उनके माध्यम से सारथी बन करके गीता ज्ञान देना प्रारंभ किया और इतना सुंदर तरीके से ठोस ज्ञान दिया। 1969 तक तो बेसिक ज्ञान को अच्छी तरह से स्पष्ट किया, जबकि दादियां कहती थी कि कराची में इतना ज्ञान स्पष्ट नहीं था, लेकिन आबू आने के बाद जब गीता ज्ञान प्रारंभ हुआ तब ज्ञान स्पष्ट हो गया। लेकिन 1969 के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त किया उसके बाद गुह्य रहस्य भरा ज्ञान आरंभ हुआ, या जिसको कहा जाए गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप। जैसे गीता के अंदर भी आरंभ में आत्मा परमात्मा योग का ज्ञान स्पष्ट करते रहे 10वें अध्याय तक तो, लेकिन 10वें अध्याय के बाद जब विराट रूप दिखाया और उसके बाद का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के बारे में। या जिसको कहे गुह्य से गुह्य ज्ञान को स्पष्ट करना आरंभ किया, कि जिसके अंदर खास करके 16, 17, 18वां अध्याय जो है, हर बात की तीन अवस्था गीता ज्ञान के अंदर स्पष्ट की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। चाहे कर्म हो, बुद्धि हो, दान हो, धारणा हो, हर बात के सात्विक, राजसिक, तामसिक स्थिति कौन सी होती है? ये जैसे आईना दिया, 69 के बाद बाबा का जो मुरलियों का स्वरूप है, अव्यक्त मुरलियों को हम सभी जानते हैं कि वो स्वरूप कौन सा था, कि सात्विक स्थिति क्या होती है हर बात की धारणा, राजसिक स्थिति क्या होती है। बाबा भी मुरलियों में हमेशा नंबर 1 आत्माएं ये है, नंबर 2 आत्माएं ये है, नंबर 3 आत्माएं ये है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक ये तीनों स्थितियों को बाबा स्पष्ट करते रहे और फिर बाबा कहते रहे, अब अपने आप को देखो कि आप कहाँ हो। कई बार बाबा की जब लकी सितारों की मुरली चलती है, एक होते हैं उम्मीदवार सितारे, एक होते हैं सफलता के सितारे, एक होते हैं उम्मीदवार। तो उम्मीदवार, सफलता और जो बाबा कहते हैं कि कहाँ हो, लकी सितारे कहाँ हो। तो तीनों स्टेज हर अव्यक्त मुरली में आप देखेंगे, जो सात्विक सर्वश्रेष्ठ स्थिति जो होती है वो क्या होती है, राजसिक स्थिति जो होती है वो कहाँ तक होती है, और तामसिक स्थिति जो होती है ब्राह्मण जीवन में भी वो क्या होती है, उसको बाबा ने स्पष्ट किया। और गीता के अंदर भी यही बातें स्पष्ट है। तो ठोस अव्यक्त मुरलियों में भी जैसे बाबा आईना देता रहा कि हर एक व्यक्ति ये महसूस करता था कि अभी तो शायद हम पहले स्टेज में जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होगा, ये महसूस आती थी बाबा की मुरलियों से। और इस तरह से 18 अध्याय का ज्ञान 2012-13 तक बाबा ने पूरा किया। 2013 से बाबा ने पूछना चालू किया, अब एवर रेडी हो, एवर रेडी हो। बच्चों ने अक्सर यही समझा कि एवर रेडी माना बाबा घर जाने के लिए पूछ रहे थे कि भाई घर जाने के लिए तैयार हो, घर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन वास्तव में घर जाने का समय अभी भी नहीं आया है। तो फिर बाबा एवर रेडी किस बात के लिए पूछ रहे थे? एवर रेडी पूछने का भाव अब समझ में आ रहा है कि गीता के ज्ञान के बाद युद्ध आरंभ होना है, युद्ध शुरू होना है। तो अब युद्ध के लिए तैयार हो गए हो या नहीं हुए हैं? गीता ज्ञान दे दिया और इसलिए 2014 से अगर आप देखेंगे, बाबा ने फाइनल टिप्स फिर भी देना चालू कर दिया कि जब भी कोई परिस्थिति आ जाए तो बाबा ने 5 स्वरूप की ड्रिल कराई, साकारी, आकारी, निराकारी की ड्रिल कराई कि जब भी कोई परीक्षा या युद्ध आ जाए तो ऊपर उठ जाओ, अपने रथ को यानी अपनी स्थिति को ऊपर उठा लो ताकि युद्ध में आप घायल न हो जाओ, ऊपर उठ जाओ, मन से, स्थिति से वतन में पहुंच जाओ। ये बाबा कहने का भाव था बाबा का कि अभी ऊपर उठ जाओ हर बात से, तब युद्ध में विजयी होंगे, क्योंकि ऊपर से आप अच्छी तरह से परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे, नीचे अगर रहेंगे तो कई चीजें आपको इफेक्ट करेगी, मन स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने ड्रिल कराया फाइनल के किस तरह से साइलेंस में चले जाओ, निराकारी स्थिति में चले जाओ, वतन में चले जाओ, ये फाइनल टिप्स देना चालू कर दिया बाबा ने। और 2014 के बाद अगर देखेंगे तो युद्ध आरंभ हो गया। अभी वो तीसरा विश्व युद्ध तो जब होना होगा तब होगा, कई लोग वही पूछते रहते हैं विनाश कब होने वाला, विनाश कब होने वाला। अरे विनाश के पहले जो युद्ध है उसमें तो विजयी बनो, विनाश जब भी होना होगा। कई लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं ये साल में हो जाएगा, ये साल में हो जाएगा, ये। अरे उन बातों में नहीं जाओ, क्योंकि उन बातों में आप अपनी बुद्धि की एनर्जी को खर्च करेंगे तो जो प्रैक्टिकल पेपर आ रहे हैं उन पेपरों का सामना करके उनको पार करके विजयी कैसे बनेंगे। उन बातों में उलझो नहीं, विनाश जब भी होने वाला होगा होगा, लेकिन अब युद्ध आरंभ हो चुका है। कौन सा युद्ध? हर एक ब्राह्मण युद्ध के मैदान में आ गया, गीता ज्ञान समाप्त हो गया है, गीता ज्ञान समाप्त हो गया है। अब बाबा सिर्फ आथक दे रहे हैं ताकि हाँ, जैसे बच्चे को मोटिवेट करना हो, उमंग उत्साह में लाना होता है तो क्या किया जाता है, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह कहते हैं ना, ताकि उसके अंदर उमंग उत्साह भरे युद्ध के लिए। तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को वाह वाह करके वो उमंग उत्साह भर रहे हैं ताकि हम युद्ध में विजयी हो जाए। ये बाबा का भाव है। बाकी बाबा ने जो गहराई की बातें सुनानी थी वो सब सुना दिया। अब बाबा युद्ध के लिए बच्चे निराश न हो जाए, ना उम्मीद न हो जाए, निरुत्साहित न हो जाए, इसलिए बाबा अभी उत्साह के ही बोल बोल रहे हैं ताकि बच्चे में उमंग उत्साह का जोश भर जाए, है ना? और इसीलिए अब युद्ध आरंभ हो गया है। कौन सा युद्ध है? हर एक ब्राह्मण युद्ध में लड़ रहा है अभी। कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से युद्ध कर रहा है, कोई बीमारियों से युद्ध कर रहा है, कोई स्वभाव संस्कारों से युद्ध कर रहा है, कोई मान शान के पीछे युद्ध में लगा हुआ है, कोई पोस्ट पोजीशन के लिए युद्ध में लड़ रहा है। हर कोई युद्ध के मैदान में है और हर कोई लड़ रहा है। कई बार ये युद्ध करते करते, परिस्थितियों से युद्ध करते करते निरुत्साहित हो जाते हैं, कब तक लड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा वाह 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 के बोल भरते हुए उमंग उत्साह फिर दिला देता है। कई बार कई लोग कहते बाबा वाह 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 क्यों करता है? अरे जरूरी है ये भी, क्योंकि नहीं तो लड़ते लड़ते थक करके एकदम टूट जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि वाह बच्चे अच्छी तरह से युद्ध कर रहे हो आप, कोई बात नहीं करो। ये बाबा उत्साह भर रहा है ताकि बाबा के ऐसे महावाक्य सुन करके भी, जैसे बच्चा भले गलती करता हो लेकिन बाप का काम है उसके अंदर उत्साह भरना, वाह बेटा वाह बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं और आगे अच्छा करो तुम, यही कहते हैं ना। तो यही उमंग उत्साह बाबा भी हमारे अंदर, क्योंकि युद्ध चालू हो गया है। अब जब युद्ध शुरू हो गया है और जितना ग्रॉस लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर होंगे तो स्थिति तो ऊपर नीचे होनी ही है। इसलिए बच्चों की अवस्था की परीक्षाएं बहुत अभी हो रही है, क्योंकि युद्ध में घायल तो हो ही जाएंगे अगर ध्यान नहीं रखा तो। तो युद्ध कहाँ कर रहे हैं हम? यही कुरुक्षेत्र के मैदान में है। कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र के अंदर ही परिस्थितियां भी आनी है, समस्याएं भी आनी है, प्रॉब्लम्स भी आने, सब कुछ आना है। तो यही तो कर्म क्षेत्र है जहाँ हम युद्ध में खड़े। अच्छा, यहाँ ही पांडव भी है तो कौरव भी है। कौरव कौन है? हाँ, भीष्म। कौरव का बड़ा कौन था? भीष्म। यानी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है पवित्रता की। कई बच्चे हैं जो भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया है, लेकिन लेकिन किस तरफ खड़े हैं, किसको साथ दे रहे हैं, सच्चे पांडवों के साथ कितना न्याय अन्याय हो रहा है, उसके लिए बोलने की हिम्मत कितनी है, है? तो भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के भी साथ किसके हैं? अपने आप को देखो कि मैं पांडवों के तरफ हूं या कौरवों के तरफ हूं। क्योंकि जब शास्त्रों में देखो कितनी सुंदर बातें आई है कि जब दुर्योधन अर्जुन दोनों ही भगवान से मदद मांगने के लिए गए और उस वक्त भगवान ने पूछा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा नारायणी सेना चाहिए। तो नारायणी सेना थी किसकी? किसकी थी? भगवान की थी ना। तो हम सभी सेना किसकी है? तो भगवान की। लेकिन किसके तरफ चले गए? किसके तरफ चले गए? भगवान के बदले कौरवों के तरफ हो गए। और कौरवों के तरफ जाने वाले कौन? नाम मान शान के साथ जो युद्ध कर रहा है। अभी भी ये इच्छाएं हैं अंदर में, नाम मान शान चाहिए। अभी भी अंदर में पोस्ट पोजीशन की इच्छाएं हैं, ये चाहिए चाहिए की चाहना है। ये कौरवों के तरफ ही हो गए, जबकि पांडवों के लिए तो कहा गया इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हो गई, बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई उनके अंदर। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, ये पांडव हो तो देखो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं पांडव हूँ या कौरव के तरफ हूँ। नारायणी सेना में ही है सभी, किसके तरफ है? द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी भी है, लेकिन जब अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई ये सुन करके कितना विचलित हो गया। तो ज्ञानी है लेकिन ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न होने कारण जब परिस्थिति आती है या अपने मित्र संबंधियों को कुछ होता है तो विचलित हो जाना स्वाभाविक। किसके तरफ है वो? वो पांडव है या कौरव है? किसके तरफ है? कौरव ही है। ज्ञानी थे, भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले थे, लेकिन थे कौरव के साथ बंधे हुए। तो कहीं हम भी कौरवों के साथ बंध तो नहीं गए कि पांडव के तरफ है? तो पांडव माना कौन? जो किसी भी बात में विचलित नहीं होता है। नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा, जिसके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति है। क्योंकि अगर कौरवों के तरफ रहे, भले भीष्म प्रतिज्ञा भी की हुई हो, लेकिन अगर कौरवों के तरफ रहे तो बाणों की शैया पर लेटना पड़ेगा। बाणों की शैया पर 18 दिन तक लेटना पड़ेगा। वो 18 दिन कितना होगा मालूम नहीं, संगम युग का एक एक घड़ी, एक एक सेकंड कितने के बराबर हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, यानी तकलीफों को भोगना पड़ा, स्थिति ऐसी हो गई। इसीलिए ये मत समझना कि हम तो पवित्रता को धारण किए हुए इतने सालों से है, हम तो हाँ स्वर्ग में आगे ही आने वाले हैं। ये गलत फहमी में मत रहना, वो गलत फहमी में मत रहना। क्योंकि अगर कौरवों के तरफ हो गए, हाँ, क्योंकि आज दुनिया के अंदर अनेक प्रलोभन भी आ रहे हैं, इसीलिए बाबा ने एक मुरली जो लास्ट की चलाई वो शायद यही देख करके कि ब्राह्मण भी किस किस के साधनों के प्रलोभन में जा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा थैंक्स करो साधनों को भी, साइंस के साधनों को थैंक्स कर दो, शुक्रिया कर दो उनको, उनके प्रलोभन में नहीं जाओ। उन्होंने जो आपके सेवा में सुख दिया या आपकी स्थिति बनाने के लिए जो मददगार बने, वो साइंस के साधनों को थैंक्स। दुनिया में थैंक्स कब दिया जाता है? हाँ, आप किसी के घर जाओ, उसने आपकी बहुत खातरी किया तो थैंक्स कब देंगे? जाते समय करेंगे ना थैंक्स कि आपने इतनी खा। तो अब समय का इशारा भी बाबा दे रहा है कि अब वापस जाने का समय आ गया, तो थैंक्स करना शुरू करो। सबको साइंस के साधनों को थैंक्स करो, थैंक्स गिविंग अब चालू हो गया कि प्रकृति को भी थैंक्स करो कि प्रकृति ने 84 जन्म हमें दिए तो सही, 84 शरीर दिए तो सही, तो प्रकृति को भी थैंक्स करो। हाँ, संबंधों को थैंक्स करो, जो आपके संबंधी बने, जिन संबंधों ने आपको सुख दिया, सहयोग दिया, उन संबंधों को भी थैंक्स करो, साइंस के साधनों को भी थैंक्स करो। तो हर एक को थैंक्स करना चालू करो ताकि हमारा लंगर अब क्या हो जाए, लंगर उठे। अभी अगर लंगर अंदर गाढ़ा रहा तो क्या होगा, मंजिल पर पहुंचेंगे, है ना। और इसीलिए आज की मुरली जब मैं सुन रही थी बड़ा अच्छा लगा, बाबा ने कहा अगर कोई परीक्षा में मूंझो, अगर कोई परीक्षा में मूंझना हुआ, अंदर में स्थिति ऊपर नीचे हुई तो क्या करो, क्या प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामा, ड्रामा का एप्लीकेशन करो। तो युद्ध का समय है, तो अब तक जो ज्ञान सुना ये ज्ञान को अप्लाई करने का समय आ चुका है। ज्ञान सुनने के लिए थोड़ी था, ज्ञान माना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अब अप्लाई करना चालू करो, और फिर भी अगर कहीं मूंझ जाते हैं तो ड्रामा कह के आगे बढ़ो, अटक नहीं जाओ वहां पर, नहीं तो घायल हो जाएंगे, स्थिति एकदम डाउन होने लगेगी। इसलिए बाबा ने कहा एक तो थैंक्स कर दो, और थैंक्स करके अपना लंगर उठा लो वहां से, नष्ट मोहा बन जाओ, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो, तपस्या करो, और फिर भी अगर कोई मूंज आई तो ड्रामा के समझ लो कि ड्रामा अति कल्याणकारी है, इस ड्रामा में हमारा कल्याण कभी हो नहीं सकता। तो यही समय है, ये युद्ध के समय में ही ज्ञान को अप्लाई करना है, ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक स्वरूप में करने की आवश्यकता है। ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और अभी ये समय जो हमें मिला है ये व्यवहारिक प्रयोग करने के लिए ही मिला हुआ है, ताकि समय पूरा, तीसरा विश्व युद्ध जब होना होगा, विनाश जब होने वाला होगा, सतयुग कब आने वाला, उन बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, उन बातों में नहीं जाओ, उन बातों को जान करके भी क्या मिलेगा। अगर कोई कह दे के भाई फलाने साल में है विनाश, और आप उसी बात पर विश्वास कर लो और कहीं आलस अलबेलेपन में आ जाओ तो क्या होगा, युद्ध में घायल तो हो जाएंगे, हर परिस्थिति अटैक करेगी, हर समस्या अटैक करेगी। तो इसीलिए फाइनल विनाश होने से पहले ये युद्ध में विजयी मुझे बनना है, क्योंकि जो ये युद्ध में विजयी बनेगा वो फाइनल विनाश के समय भी विजयी होकर के पास विथ ऑनर हो जाएंगे। जो इस समय के युद्ध में अगर विजयी नहीं हुए तो फाइनल पेपर, विनाश का जो पेपर होगा उसमें पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट कभी नहीं ले सकेंगे। इसलिए यही समय है जब हमें तीनों सर्टिफिकेट जो बाबा ने लेने के लिए कहा है, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, परिवार मुझसे संतुष्ट और भगवान मुझसे संतुष्ट, कब होगा, जब मैं हर पेपर में विजयी हो जाऊं तब। इसलिए युद्ध आरंभ हो चुका है, हर एक के जीवन में युद्ध आरंभ हो चुका है, ये मान करके चलो, और इसीलिए विजयी बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प या ये तीव्र पुरुषार्थ बाबा देखना चाहते हैं कि पेपर आए उसके पहले फाइनल करो कि ये पेपर को पार करने के लिए या विजयी होने के लिए किस शस्त्रों का प्रयोग करना है। जब प्रकृति से पेपर आता है तो वहां पर दो शस्त्र जरूरी होता है, कौन से, सामना करने की शक्ति और सहन शक्ति। सहन भी करना होता है, सामना भी करना होता है, और पार करना होता है। ये दोनों पावर को व्यक्तियों के सामने यूज नहीं करना है, व्यक्तियों का सामना नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विजयी होने के बजाय हार हो जाएगी, अवस्था डगमग हो जाएगी। इसलिए कौन सी शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, अपने संस्कारों के सामने विजयी होने के लिए कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है, साइलेंस पावर को, साइलेंस की शक्ति से अपने संस्कारों को काटना है। ये पुराने संस्कारों को भी काटने की जरूरत क्यों है, उसको खत्म करने की जरूरत क्यों है? बहुत सुंदर मैंने किसी जगह पढ़ा कि लोहे को तोड़ने वाला कौन होता है, लोहे को कौन तोड़ सकता है, उसका अपना जंक। लोहे को और कोई नहीं तोड़ सकता, उसका अपना जंक ही उसको तोड़ता है। ऐसे मनुष्य को तोड़ने वाला कौन, उसके कमजोरी के संस्कार ही उसको तोड़ते हैं, उसको विजयी होने से रोकते हैं। इसलिए हमें अपने पुराने संस्कारों को अभी समाप्त करना है, जिसको बाबा कहते भस्म कर दो, उसको समाप्त करो, ऐसा जो संस्कार का भी संस्कार कर दो, भस्म ही कर दो, ताकि वो पुनः जागृति न हो। क्योंकि ये कमजोरी के संस्कार को अगर अंदर पाल के रखे तो वो संस्कार ही हर युद्ध में हमारी हार का कारण बन जाएगा। इसीलिए संस्कार का ही संस्कार कर दो। लोहे को तोड़ने वाला उसका अपना जंक ही होता है, मनुष्य को हर युद्ध में हार खिलाने वाला उसका अपना कमजोरी का संस्कार ही होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं संस्कार परिवर्तन करो। और दैवी संस्कारों को जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने जागृत किया, ऐसे हमें भी अपने अंदर से वो ओरिजिनल संस्कार हमारे जो शुद्धि के हैं, संपूर्णता के हैं, उस संपूर्णता के संस्कार को जागृत करना है, तब हम ये पुराने संस्कारों का भी संस्कार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर अभी जिस तरह से साइंस भी विकसित होता जा रहा है, ये साइंस के भी अनेक प्रकार के प्रलोभन हमारे सामने पेपर बन करके ही आएंगे। इसीलिए बाबा का इनका थैंक्स कर दो, अभी ज्यादा उसी के अंदर नहीं जाना है, उसका भी थैंक्स करके उसको समाप्त करो, बुद्धि वहां से हटाओ। थैंक्स करना माना बुद्धि वहां से हटाओ अभी, क्योंकि नहीं तो यही बुद्धि का अटकाने वाला कारण बन जाएगा, जो हमारे पुरुषार्थ को रोक लगा देगा और हमें नीचे गिराने के लिए आधार बनेगा, या समय पर बाबा की याद से हमें वंचित कर देगा। इसीलिए बहुत सुंदर एक बात मुझे याद आती है, कहानी मैंने थोड़े समय पहले ही पढ़ी थी, जो याद आती है कि एक बार एक राजा बहुत भक्ति कर रहा था, और भक्ति करके जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हो, मांगो, जो मांगोगे मिल जाएगा। तो राजा बड़ा दयालु था, कहा कि भगवान मेरी एक ही इच्छा है, वैसे तो सब कुछ आपने दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक इच्छा जरूर है मेरी। कहा कौन सी इच्छा? तो कहा जिस तरह आप मेरे सामने प्रसन्न हुए और मुझे ये सौभाग्य दिया, मैं सोचता हूँ मेरी सारी प्रजा और मेरे मित्र संबंधी को भी आप दर्शन दो, ताकि वो भी धन्य हो जाए। कहा कि ये तो असंभव है, भगवान ने कहा कि सबको मैं दर्शन दूँ, ये तो असंभव हो जाएगा। कहा नहीं, मेरी ये इच्छा जरूर आप पूरी करो। भगवान ने भक्तों के आगे तो फिर भी दिखाया है कि भगवान अपने आप में झुक जाता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज से ठीक एक हफ्ता बाद तुम सबको लेकर के उस पहाड़ी पर आना, और पहाड़ी पर जब ऊपर आएंगे मैं सबको दर्शन दे दूंगा, ठीक है? कहा ठीक है। राजा बड़ा खुश हो गया, नगाड़ा बजवा दिया सारे राज्य के अंदर के भाई सभी चलो भगवान दर्शन देने वाले। सारे प्रजाजन इकट्ठे हो गए, सबको लेकर के राजा चलने लगे کہ راستے میں سب سے پہلے تانبے کی پہاڑی آئی، اتنے تانبے کے سکے اور سب دیکھا تو کچھ لوگ وہاں اٹک گئے کہ نہیں بھائی یہ تانبا کا سکہ ہے، اس کو کیسے چھوڑ دے. راجہ نے کہا یہ اس میں نہیں جاؤ، اوپر بھگوان کی پراپتی ہے، پرماتما کی پراپتی ہے. کہا نہیں، پرماتما کی پراپتی بعد میں بھی کبھی ہو جائے گی، ہے نا، بعد میں بھی ہو جائے گی، اس سمے تو یہ لے لے وے، جھولیاں بھر لے وے اپنی. ٹھیک ہے، راجہ بھی کیا کر، باقی سب کو لے کر کہا چلو چلو چلو، باقی سب کو لے کر آگے چلے تو چاندی کی پہاڑی آئی جہاں چاندی کے سکے تھے. تو چاندی کو دیکھ کر کے اور پرلوبھن جاگرت ہوا، وگیان آگے جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، پرماتما پراپتی سے کیسے ونچت کر سکتا ہے. لوگوں نے کہا نہیں چاندی ہے، اتنا لے لو، جتنا بھر سکو بھر لو، بھرنا لگے. راجہ بہت ونتی کرنے لگا، اس میں مت پھنسو، آپ بھگوان کی پراپتی کر لو پہلے. کہا بھگوان کی پراپتی پھر کبھی ہو جائیں گی، ابھی تو یہ پراپتی جو ہو رہی ہے وہ تو لے لے وے. اور آگے بڑھے، باقی سب جو تھوڑے ان کے ساتھ بچے تھے ان کو لے کر کے اور آگے بڑھے تو سونے کی پہاڑی آئی، سونے کے سکے آئے. سونے کی چمک کو دیکھ کر کے لوگوں نے سوچا بھر لو، سونے کے سکے مل رہے ہیں، بھر لو اپنی جھولی، بھر لو. بھرنا شروع کر، راجہ کہے چھوڑو ان سب کو، بعد میں مل جائیں گا. کہ نہیں، بعد میں بھگوان کی پراپتی ہو جائیں گی، ابھی تو یہ بھر لیتے ہیں. اس میں اٹک گئے، خالی راجہ رانی رہ گئے اور کچھ انانیہ رہ گئے. راجہ نے کہا دیکھو پرلوبھن بھی کیسی چیز ہے، بھگوان کی پراپتی کرنا نہیں چاہتے ہیں. رانی نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن چلو ہم لوگ تو چلتے ہیں. آگے بڑھے تو ہیرے کی پہاڑی آ گئی. اب رانی کا بھی من للچا گیا، ہیرے کو تو لینا ہی چاہیے، ہے نا، ہیرے میں پھنس گئے. وہ بھی اپنی پلو لے کر کے ہیرے بھرنا چالو ہو گئے. راجہ کہے چھوڑو اس کو. کہا نہیں، تھوڑا بھر لیتی ہوں پھر چلتی ہوں. راجہ اکیلا ہی اوپر پہنچا. بھگوان نے کہا کہاں ہے سب؟ ہاں کہاں ہے سب؟ تو دیکھو بھگوان کی پراپتی ہو رہی ہے اور منوشیہ کہاں اٹکے ہوئے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ برہمنوں کو بھی محسوس ہوا، چلنے سمے تو سارے چلے لیکن بیچ میں سائنس کی پرلوبھن کی پہاڑیوں میں آئے. ہاں، تو آج موبائل ہے، کل دوسرا ہے، کل تیسرا ہے، کل چوتھا ہے، ایک ایک چیز آتی گئی اور اوپر پہنچنے والے کتنے رہے؟ 108. 9 لاکھ میں سے اوپر کتنے پہنچے؟ 108. اور سمپورن کتنے پہنچے؟ صرف 8. تو اپنا نمبر دیکھ لو کہاں ہے، کہاں ہے سبھی. ہاں، تو اسی لیے یہ مایا کے تلسم کے جیسے یہ چیزیں ہیں. اس لیے بھگوان کہتے اب تک اس نے جو سکھ دیا تھینکس کر لو اس کا، بدھی کو اٹکاؤ نہیں، اب آگے بڑھو، پروشارتھ میں آگے بڑھو. اور جو پروشارتھ میں آگے بڑھیں گے، بھگوان کی پراپتی ایک ہی بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی. باقی سبھی پرلوبن تو ہمیں اس سے بھی ایڈوانس روپ میں ستیوگ میں ملنے والے ہی ہے. سائنس اپنی ریفائن سوروپ میں، سونا اپنی ریفائن سوروپ میں ستیوگ میں ملنے والا ہی ہے، لیکن بھگوان کی پراپتی سارے کلپ میں صرف ایک بار ہوتی ہے. اس لیے جو بھگوان کی چاہنا ہے، وہ چاہنا کو ہم اپنے جیون کے اندر پراپت کرتے ہوئے دھنیہ دھنیہ اپنے آپ کو بنا لے، کیونکہ بعد میں 5000 سال تک یہ ہونے والا نہیں ہے. سونا، چاندی، تانبا سب کچھ ملے گا سارے کلپ میں ہمیں، ہے نا، لیکن یہ جنم بار بار نہیں ملے گا. اس لیے ایشور پراپتی سروشریشٹھ پراپتی ہے، اس سے آگے سونا، چاندی، ہیرا، موتی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی لیے اب اپنی بدھی کو کیا کرو، ان سبھی باتوں سے اوپر اٹھا لو. جتنا اپنی بدھی ان باتوں میں پھنسی ہوگی تو ہر یدھ کے اندر ہماری ہار نشچت ہے. اس لیے کہا کمزوری جہاں ہوگی वो कमजोरी ही हमें तोड़ने के लिए निमित्त बनेंगे। लोहे को तोड़ने वाला उसका जंक होता है, मनुष्य को तोड़ने वाले उसकी अपनी कमजोरी के संस्कार होते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी के संस्कार के ऊपर विजयी बनने के लिए उसको भस्म करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा न हो एकदम संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने से थोड़े ही पहले क्या हो जाए, पहाड़ी के नीचे गिरते हुए आ जाए। इसीलिए अब अपने बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाना नहीं है। सबको थैंक्स करो, सबने सहयोग दिया, सबने सुख दिया, सबने जो दिया थैंक्स करो और आगे बढ़ो। शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए सबके प्रति अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न मुझे करना है और उसी में ही मुझे अपने आप में परमात्मा के समीप साथ का अनुभव करते हुए हर युद्ध के अंदर विजयी बनना है। इसीलिए पांडव माना कौन जिसने भगवान को सारथी बना लिया, भगवान के साथ हर कदम मिलकर के चलते रहे, वो सच्चे पांडव होंगे। बाकी कौरव भी नारायणी सेना ही थी लेकिन कौरव के साथ थी। इसी तरह दुनिया के संबंधों ने जो अब तक सुख दिया बहुत अच्छी बात है, उसको ये करे अंदर से शुक्रिया कर दे कि आपने हमें बहुत सहयोग दिया, नहीं दिया तो भी उनके प्रति शुक्रिया, या किसी ने अगर सुख दिया तो बहुत अच्छी बात, आप थैंक्स करो। लेकिन अगर किसी ने दुख दिया, विघ्न डाले, कोई ने आपके लिए रुकावट, उसको भी थैंक्स देना है। क्यों? क्योंकि उसने दुख दिया तभी आपका मन भगवान के तरफ लगा ना। अगर वो दुख नहीं देते थे तो भगवान के तरफ जाते थे क्या? दुख नहीं देते थे तो भगवान के तरफ कभी नहीं जाते थे। तो उन्होंने दुख दिया वही आपको भगवान तक पहुंचाया, तो इसीलिए उनका भी थैंक्स, सुख देने वाले का भी थैंक्स, तो दुख देने वाले का भी थैंक्स। सबका थैंक्स करो और सबका थैंक्स करके अब अपनी बुद्धि को उपराम उठा लो, ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को जितना निरंतर रख सके वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अब युद्ध चालू हो गया तो विजयी उसकी है जो सारथी बना देगा भगवान को। जिसने सारथी नहीं बनाया, हर कदम बाबा के साथ मिलकर के, हर कदम में पहले बाबा को याद करो, हर कर्म करते पहले बाबा को याद, बाबा को साथ लेकर के सारथी बना करके आप कर्म करते चलो, तो कैसी भी परिस्थिति होंगी, कैसी भी युद्ध की स्थिति होंगी, कैसे भी विघ्न आएंगे, उसमें भी निर्विघ्न बनाने वाला बाबा होगा। करण करावनहार बाबा है, ये याद रखो। इसीलिए बाबा को साथ लेकर के हर कदम चलते चलेंगे तो क्या सुरक्षित, क्योंकि अब की जो चढ़ाई है वो कैसी है? जैसे लोग बद्री केदारनाथ जाते हैं तो चढ़ाई कैसी होती है? हाँ, ऐसी सीधी एकदम, और पटरी कैसी होंगी? जरा भी पैर इधर उधर हुआ तो गए नीचे, गए ऐसे ही होता है ना। तो अब तक जो चढ़ाई चढ़ते रहे वो तो ऐसी थी, लेकिन अब चढ़ाई है वो ऐसी है जो मंजिल को पहुंचेंगे तो कितने पहुंचने वाले हैं, वाह। हाँ, ये हाथ बाबा भी देख रहा होगा और कितना खुश हो रहा होगा। तभी तो बाबा ने कहा 108 से ज्यादा हुए तो लड़िया लगा दूंगा, है ना। लेकिन अब ये हाथ हमेशा याद रहे कि हमने ये हाथ खड़ा किया था, हाँ, कि हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। फिर कल को बहाना नहीं देना कि हम तो पहुंचना चाहते थे लेकिन ये प्रॉब्लम आ गया, ये परिस्थिति आ गई, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए हम तो नीचे गिर पड़े, फिसल गए एकदम। ये बहाना नहीं देना, ठीक है ना। इसीलिए अब हर पेपर के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दो, हर पेपर के लिए हम तैयार है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, हम ही वो पांडव है مجھے کوروں کو نہیں دیکھنا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، یہ بابا کا بچہ اتنے سالوں سے بنا تو بھی اس کے جیون میں دھارنا نہیں ہے، وہ کوروں ہے، سمجھ لو نا. آپ تو پانڈو بن جاؤ، آپ اس کی شکایت کر کے آپ کوروں کے طرف کیوں جا رہے؟ کوروں میں کیا ہو گئے، البیلے ہو گئے تھے نا. تو جو البیلا پن کے ڈنلپ کے تکیے لے کر کے چلنے کا پریاس کریں گے وہ کورو ہی ہو جائیں گے، اس کی کبھی وجئی ہو نہیں سکتی ہے. اسی لیے پانڈو بن جاؤ، ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، ان ویرتھ کی باتوں میں مجھے جانا نہیں ہے. اگر وہ کچھ البیلے پن میں آ کر رہا ہے تو اچھا ہے، اس نے راستہ کلیئر کر دیا کہ آپ آگے بڑھو، تو آگے بڑھو نا. اس نے راستہ کلیئر کر دیا آپ کے لیے. ہاں بھلے وہ اتنے سالوں سے گیان میں تھا، لیکن اگر وہ البیلے پن میں آ کر کے پرشارتھ نہیں کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو اتنے سالوں سے یہ پرشارتھ ہی نہیں کر رہا ہے، ہاں تو کم سے کم اس کا بھی تھینکس مانو کہ وہ البیلے پن میں آ کر آپ کو کہتے ہیں راستہ کلیئر ہے، آپ آگے جاؤ، جاؤ آگے. تو آپ کو راستہ دے رہا ہے تو اس کا بھی کرو تھینکس، اس کو بھی کرو تھینکس کہ ہم کو راستہ کلیئر کر کے دے دیا آپ نے. باقی وہ البیلے پن میں اس لیے میں بھی البیلا ہو جاؤں، ہاں کیا ہوگا اس سے؟ ہاں البیلے پن کے ساتھی نہیں بنو، البیلے پن میں جو برہمن ہے ان کے ساتھی نہیں بننا ہے. ہمیں کس کے ساتھی بننا ہے؟ بابا کے ساتھی. بابا کرن کراون ہار ہے، اپنی بدھی کو ایسا سمرپت کر دو بابا کے آگے، بابا کے آگے کہ بابا یوز کرے آپ کو سمے انوسار ساکشاتکار کرانے کے لیے، پرتیکشتا کا پردہ کھولنے کے لیے آپ کو یوز کرے بابا. تو اپنے آپ کو اتنا تیار کر لو کہ بابا اب میں سمرپت ہوں، آپ اس تن کا جس طرح سے بھی پریوگ کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے بھی مجھے یوز کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے آپ یوز کرو. تو اسی لیے اب پریکٹیکل گیتا گیان کا ویوہارک پریوگ کرنے کا سمے آ گیا ہے، اور اسی لیے اس میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. بابا نے ہمیشہ یہ مہاواکیہ کہا ہے، لاسٹ سو فاسٹ سو فرسٹ، وہ فرسٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اس لیے آپ بھلے بابا کے پاس پہلی بار آئے ہوں گے لاسٹ میں، لیکن لاسٹ سو فاسٹ سو فرسٹ جانے کی گارنٹی بھگوان کی ہے، لیکن تب جب آپ اپنا ہاتھ اور ساتھ صرف بابا کے ساتھ رکھو. تو اگر ادھر ادھر ساتھ ڈھونڈنے کا پریاس کیا، اس کا ساتھ لے لوں نہ، اس کا ساتھ لے لوں نہ، اس کے ساتھ چلوں، تو کیا ہوگا؟ تو بھگوان گارنٹی نہیں لیں گا. وہ دادی جان کی ہمیشہ کہتی ہے کہ بابا کے دو پوز ہے، آپ اوپر جائیں گے نا تو ہسٹری ہال میں جائیں گے تو بابا کا ایک ہاتھ آگے کا پوز ہے اور ایک ہاتھ پیچھے کا پوز ہے، دو چتر ہے ایسے بابا کے ہسٹری ہال میں. تو بابا کا جو آگے کا پوز ہے وہ کہتا ہے جو بچے تکلیف میں ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو بابا ترنت اپنا ہاتھ آگے کر لیتا ہے، آؤ بچے چلو میرا ہاتھ پکڑ لو اور چلو آگے. لیکن جو ادھر ادھر ساتھ دیکھنے کا پریاس کرتے، اس کا ساتھ لے لوں، اس کا ساتھ لے لوں، اس کا ساتھ لے لوں، ادھر ادھر ساتھ لینے کا پریاس کرتے ہیں، بابا کو بھول جاتے تو بابا بھی ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں اور پھر انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا اور لاسٹ میں کہا او بابا، تو بابا بھی کیا کہتے، ابھی میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں ابھی. بھگوان بھی جب سمے تھا تب کر سکتے تھے، سمے پورا ہونے کے بعد بابا بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو ہاتھ پیچھے کر لیں گے. تو ہمیں کون سا ہاتھ چاہیے؟ آگے والا. تو اسی لیے کچھ بھی ہو، ویکتیوں کا سہارا، وستوں کا سہارا، ان سب سہاروں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاؤ. آپ سوچیں گے لیکن ہم نے تو برہمن آتماؤں کا ہی سہارا لینے کا پریاس کیا، ہاں فلانے بہنوں کا، بھائیوں کا ہی سہارا لینے کا پریاس کیا، अरे बाबा सहारा देने के लिए बैठा है तो बाबा का सहारा लो ना। बाबा ही सबसे बड़ा है, बाबा ही सर्वसमर्थ है। कोई भी भाई या बहन सर्वसमर्थ नहीं है, इसलिए बाबा का सहारा लो और बाबा के सहारे पर चलते चलेंगे तो सदा विजयी आत्मा। तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, ऊपर मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब से क्या करो, युद्ध में विजयी होने के लिए अर्जुन ने क्या किया, भगवान को अपना सारथी बना लिया। तो आप सभी कौन हो, अर्जुन हो या दुर्योधन हो? दुर्योधन ने क्या कहा था? दुर्योधन ने भगवान से यही कहा था, धर्म क्या है मैं जानता हूँ, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन अधर्म को छोड़ नहीं सकता हूँ, धर्म पर चल नहीं सकता हूँ। तो कई बाबा के बच्चे हैं, श्रीमत क्या है जानते हैं, मनमत क्या है परमत क्या है जानते हैं, लेकिन फिर भी जो श्रीमत पर नहीं चल सकते, मनमत परमत का सहारा लेते हैं, वो कौन हो गए? पांडव हो गए, कौरव हो गए। हाँ कौरव हो गए ना, तो मुझे क्या बनना है? पांडव बनना है। तो श्रीमत का हाथ पकड़ के चलो, मन मत पर मत का हाथ पकड़ के नहीं चलो, वही आपको कौरव बना देगा। और वो नारायणी सेना कौरव के तरफ जो हो गई, उसकी हार भी निश्चित और बाणों की शैया पर भी क्या लेटना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसे बाणों की शैया पर मुझे लेटना नहीं, ठीक है। अच्छा ओम शांति।
फलक से हम यही गाए।